आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। देश भर के शहरों सिडनी, कैनबरा, ब्रिस्बेन, होबार्ट, मेलबर्न और पर्थ सहित कई क्षेत्रीय केंद्रों में प्रवासन विरोधी रैलियां हुई हैं। आयोजकों को अतिराष्ट्रवादी यानी अल्ट्रा नेशनलिस्ट विचारों से जुड़ा माना जा रहा है और इन रैलियों में नियोनाजी समूहों की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। राजनीतिक नेताओं ने इन रैलियों की कड़ी निंदा की है। रविवार 31 अगस्त को एक बहुसांस्कृतिक समारोह में बोलते हुए विक्टोरियन प्रीमियर जेसिंटा एलन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह नहीं है जहां हम नाजियों के साथ कदम मिलाकर चल सके। वहीं मेलबर्न के सीबीडी में रायट स्क्वाड को तैनात किया गया है। पुलिस ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया और कई गिरफ्तारियां की, जब प्रवासन विरोधी प्रदर्शनकारियों की झड़प प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शनकारियों से हुई। प्रमुख नियोनाजी थॉमस स्यूल ने संसद भवन के सामने बड़ी भीड़ को संबोधित किया। एडिलेड में भी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन वहां हंगामा तब मच गया जब एक नियोनाजी ने माइक संभाल लिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उस व्यक्ति को बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था और आयोजकों ने दखल देकर माइक की आवाज बंद कर दी। इसके बाद भीड़ से उसे बोलने दो यानी लेट हिम स्पीक के नारे लगने लगे, जिसके चलते आयोजकों को रैली समाप्त करनी पड़ी। वहीं सिडनी में तथाकथित मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया प्रदर्शनों का सामना दो एंटी रेसिज्म रैलियों ने किया, जहां पुलिस ने संभावित टकराव की आशंका के बीच भीड़ को नियंत्रित किया। शहर में लगभग 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए ताकि विरोध प्रदर्शनों को अलग रखा जा सके और शांति बनाए रखने की कोशिश की जा सके। अल्फ्रेड पार्क में आयोजित एक काउंटर प्रोटेस्ट में लाइव संगीत भी शामिल था और इसका उद्देश्य साप्ताहिक प्रो पैलेस्टाइन रैली से जुड़ना था। प्रवक्ता जेन सालमन ने कहा कि सैकड़ों लोग यहां आए हैं और संघर्ष का डर होने के बावजूद आए हैं। वे बहुत साहसी हैं, वे प्रवासियों और फेयर गो के लिए खड़े होना चाहते हैं। दूसरी ओर डेजी फ्रीमैन की पत्नी, जिन पर पुलिस ने पोरेपुंका में दो अधिकारियों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है, ने अपने वकीलों के जरिए बयान जारी करते हुए उनसे आत्मसमर्पण करने की अपील की है। फ्रीमैन पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद विक्टोरिया के हाई कंट्री इलाके की झाड़ियों में फरार हो गए थे और पिछले 5 दिनों से पुलिस से बचते फिर रहे हैं। एबीसी को मिले बयान में अमालिया फ्रीमैन ने डिटेक्टिव लीडिंग सीनियर कांस्टेबल नील थॉम्पसन और सीनियर कांस्टेबल वार्डन डी वॉट की मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे पुलिस को पूरा सहयोग देंगी ताकि इस त्रासदी का शीघ्र और सुरक्षित अंत हो सके। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की 2025 वार्षिक ओवरडोज रिपोर्ट के नए आंकड़े बताते हैं कि अधिक मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाई लोग नशीली दवाओं के ओवरडोज से मर रहे हैं। हाल के मृत्यु के आंकड़ों के अनुसार बुजुर्ग ऑस्ट्रेलियाइयों के ओवरडोज से मरने की संख्या में 300% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस के अवसर पर जारी किए गए। कुल मिलाकर ताजा रिपोर्टिंग वर्ष में 2,272 ऑस्ट्रेलियाई ओवरडोज से मरे, यानी हर दिन औसतन 6 से अधिक मृत्यु। चिंताजनक रूप से अनजाने में ओवरडोज से होने वाली मृत्यु की दर अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए लगातार अधिक बनी हुई है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायली सेना का कहना है कि गाजा सिटी के जैतून इलाके में उनकी एक बख्तरबंद गाड़ी विस्फोट की चपेट में आने से 7 सैनिक घायल हो गए। ये धमाका शुक्रवार रात स्थानीय समय पर हमास लड़ाकों के साथ तीव्र झड़पों के दौरान हुआ। अरबी मीडिया, जिनमें अल जजीरा भी शामिल है, की रिपोर्ट है कि हमास लड़ाके इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इजरायल ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ये घटना ऐसे समय हुई है जब इजरायल ने गाजा सिटी को खतरनाक युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है, दैनिक मानवीय ठहराव रोक दिए हैं और हजारों लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। राहत संगठनों ने चेतावनी दी है कि नाकेबंदी ने शहर को अकाल के कगार पर पहुंचा दिया है। और अंत में अब खबरें भारत से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में शामिल होने चाइना पहुंचे। इस मौके पर उनकी 7 साल बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। मोदी ने कहा कि भारत और चाइना आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि सीमा पर तनाव कम हुआ है और अब शांति और स्थिरता का माहौल है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बहाल कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन की 2.8 अरब आबादी का हित आपसी सहयोग से जुड़ा है और मिलकर चलना पूरी मानवता के लिए लाभकारी रहेगा। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चाइना को ड्रैगन और हाथी बताते हुए कहा कि दोनों देश दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले राष्ट्र और ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं, इसलिए उन्हें अच्छे पड़ोसियों की तरह सहयोग करना चाहिए। वैश्विक व्यापार और बदलते गठबंधनों के बीच मोदी की यह चाइना यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। इसी के साथ 31 अगस्त 2025 का ये न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए SBS हिंदी को।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।